डैनियल की पुस्तक संख्या 24।
निम्रोद, नबूकदनेस्सर और बेलशज्जर
जैसे पुराना नियम और नया नियम एक ही पुस्तक हैं, उसी प्रकार दानियेल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें भी एक ही पुस्तक हैं। परिवीक्षा समाप्त होने से ठीक पहले यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य खुल जाता है।
और उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी के वचनों पर मुहर न लगाना, क्योंकि समय निकट है। जो अन्यायी है वो अन्यायी ही बना रहे, और जो अशुद्ध है वो अशुद्ध ही बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी ही बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र ही बना रहे। और देखो, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है, ताकि मैं प्रत्येक को उसके कर्म के अनुसार दूँ। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत, प्रथम और अंतिम। प्रकाशित वाक्य 22:10-13।
बाइबल का प्रथम उल्लेख का नियम, जिसमें ये सत्य शामिल है कि किसी चीज का अंत उसकी शुरुआत द्वारा दर्शाया जाता है, दानियेल की पुस्तक के पहले 3 अध्यायों के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि वे उस पुस्तक में उल्लेखित पहला सत्य है जो दानियेल और प्रकाशित वाक्य में यीशु, अल्फा और ओमेगा वेल। इसलिए उस पुस्तक की शुरुआत, जो दानियेल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें हैं, उस सत्य का प्रतिनिधित्व अवश्य करती है जो अंत में खोला जाता है। तो एक स्तर पर जो सत्य खोला जाता है वो प्रकाशित वाक्य 14 के स्वर्ग दूतों का अनंत सुसमाचार है। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय की पहली आयत में प्रस्तुत यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य वह संदेश है जो कलीसियाओं को तब दिया जाना है जब समय निकट है। और प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में जिस समय निकट है का उल्लेख है वह वही समय होना चाहिए जिसका उल्लेख अध्याय 22 में अनुग्रह काल समाप्त होने से ठीक पहले समय निकट है के रूप में किया गया है।
यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जिसे परमेश्वर ने उसे दिया कि वे बातें जो शीघ्र होने वाली हैं वो अपने दासों को दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर अपने दास यूहन्ना के पास उसे संकेतों में प्रकट किया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही और जो कुछ उसने देखा उन सब की गवाही दी। धन्य है वो जो पढ़ता है और वे जो इस भविष्यद्वाणी के वचनों को सुनते हैं और जो उसमें लिखी बातों का पालन करते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य 1:12-12।
वो संदेश जो अंतिम संदेश है, जिसकी मुहर अनुग्रह की अवधि समाप्त होने से ठीक पहले जब समय निकट है खोली जाती है, वो दूसरे स्वर्गदूत और मध्यरात्रि की पुकार का पश्चात की वर्षा वाला संदेश है। ये 7 गर्जनाओं के छिपे हुए इतिहास से जुड़ा सत्य है। ये 7 में से 8वां का प्रकाशन है, और वो स्वर्णिम सूत्र जो इन सब अनमोल प्रकाशनों को एक साथ बुनकर मसीही की धार्मिकता का सुंदर वस्त्र बनाता है वो है लेव्य व्यवस्था 26 का अनमोल 7 बार। दानियेल का पहला अध्याय और फिर दानियेल अध्याय 1-3 तक वही संदेश है। अध्याय 2 का भेद भी वही संदेश है। दानियेल का पहला अध्याय पहले स्वर्गदूत के संदेश का प्रतिनिधित्व करता है, और जैसे प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय में पहले स्वर्गदूत के संदेश में तीनों स्वर्गदूतों के संदेशों के सभी भविष्य सूचक मील के पत्थर दर्शाए गए हैं, वैसे ही तीनों संदेशों के सभी भविष्य सूचक मील के पत्थर दानियेल के पहले अध्याय में भी दर्शाए गए हैं। ये तत्व 3 चरणीय परीक्षण प्रक्रिया को दर्शाते हैं जो दानियेल के पहले अध्याय में सबसे पहले आहार परीक्षा के रूप में प्रकट होती है, जिसके बाद दृश्य परीक्षा आती है जो लिटमस परीक्षण तक ले जाती है। अध्याय 1 जब अध्याय 2 और 3 के संबंध में देखा जाता है तो आहार परीक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, अध्याय 2 दृश्य परीक्षा का और अध्याय 3 लिटमस परीक्षण का। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के 3 स्वर्गदूतों के संदेश और दानियेल के अध्याय 1-3 3 चरणीय परीक्षण प्रक्रिया के लिए 4 साक्षी प्रदान करते हैं। दानियेल के अध्याय 4 और 5 भविष्यवाणी के इतिहास की एक अत्यंत गहन रेखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन दोनों अध्यायों से उत्पन्न वो रेखा कम से कम 6 विशिष्ट भविष्य सूचक रेखाओं को समाहित करती है। उन भविष्य सूचक रेखाओं में से एक 733 ईसा पूर्व में आरंभ होती है और रविवार के कानून तक चलती है। छह में से दूसरी रेखा 77-99 से लेकर रविवार के कानून तक के इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है और उस रेखा में एक साथ तीन भविष्य सूचक रेखाएं चित्रित होती हैं। पृथ्वी के पशु संयुक्त राज्य अमेरिका की रेखा, फिर प्रोटेस्टेंट सिंह की रेखा और साथ ही रिपब्लिकन सिंह की रेखा। ये सब मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका की भविष्य सूचक रेखा के आरंभ में पांचवी रेखा स्थापित करते हैं। वो रेखा 77-99 में दानियेल के अध्याय 7, 8 और 9 की मुहर खुलने को चिन्हित करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की भविष्य सूचक रेखा के अंत में एक छठी रेखा उत्पन्न होती है जो 1981 में दानियेल के अध्याय 10, 11 और 12 की मुहर खुलने को चिन्हित करती है। पृथ्वी के पशु की भविष्य सूचक रेखा की शुरुआत, जिसका निरूपण दानियेल अध्याय 4 करता है, 7 times के प्रतीक से चिन्हित है और उसी भविष्य सूचक रेखा का अंत भी 7 times के प्रतीक से चिन्हित है। इतिहास की उस अवधि की शुरुआत और अंत, जिसका निरूपण अध्याय 7, 8 और 9 की मुहर के खुलने से होता है, भी 7 times के प्रतीक से चिन्हित है। इतिहास की उस अवधि की शुरुआत और अंत, जिसका निरूपण दानियेल के अध्याय 10, 11 और 12 की मुहर के खुलने से होता है, भी 7 times के प्रतीक से चिन्हित है। इतिहास की उस अवधि का अंत, जो 1798 में अंत के समय पर दानियेल के अध्याय 7, 8 और 9 की मुहर खुलने से आरंभ हुई थी, 1863 में हुआ। इतिहास की उस अवधि का आरंभ, जो अंत के समय पर दानियेल के अध्याय 10, 11 और 12 की मुहर खुलने से शुरू हुई, 1989 में हुआ। 1863 से 1989 तक 126 वर्ष होते हैं। 126 वर्ष 1260 वर्षों का दसवां भाग या दशमांश है। अतः 126 की संख्या 1260 वर्षों का प्रतीक है, जो मरुभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और मरुभूमि बदले में 7 समय के 2520 वर्षों का प्रतीक है। ये वास्तविकता बताती है कि पृथ्वी के पशु के इतिहास में आरंभ में पहले स्वर्गदूत का आंदोलन और समाप्ति पर तीसरे स्वर्गदूत का आंदोलन, दोनों के आरंभ और अंत 7 समय से चिह्नित है और उन दोनों आंदोलनों के बीच का जो कालखंड उन्हें एक साथ जोड़ता है, वो भी 7 समय द्वारा दर्शाया गया है। बाइबल की पंक्ति पर पंक्ति वाली पद्धति को लागू किए बिना इस प्रकार की प्रकाशना को देखना और समझना असंभव है, क्योंकि उस पद्धति के बिना मुहरबंद पुस्तक को धर्मशास्त्र की विद्या में शिक्षित किसी व्यक्ति को दे दिया जा सकता है और फिर उससे ये समझाने को कहा जा सकता है कि उस मुहरबंद पुस्तक का अर्थ क्या है। उसके मत का अहंकार उसे ये बताने पर मजबूर करेगा कि मुहरबंद पुस्तक को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि वो मुहरबंद है। तब आप उस मुहरबंद पुस्तक को लेकर उस प्रबुद्ध व्यक्ति द्वारा नियंत्रित और निष्क्रिय बना दिए गए झुंड में से किसी एक को दे सकते हैं और वो झुंड, जो धर्मशास्त्री की दंत कथाओं के परोसे हुए पकवान खाकर आरामदेह हो चुका है, मुहरबंद पुस्तक का अनुप्रयोग करने से इनकार कर देगा, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि सत्य क्या है। ये तय करने के लिए केवल धर्मशास्त्रीय सन्हेद्रन के सदस्यों को ही नियुक्त किया गया है।
ठहरो और चकित हो, चिल्लाओ और पुकारो, वे नशे में हैं पर दाख मधु से नहीं, वे लड़खड़ाते हैं पर प्रबल मदिरा से नहीं, क्योंकि प्रभु ने तुम पर गहरी नींद की आत्मा उंडेल दी है और तुम्हारी आंखें मूंद दी हैं। भविष्य वक्ताओं को और तुम्हारे शासकों अर्थात दृष्टाओं को उसने ढंग दिया है और सबका दर्शन तुम्हारे लिए उस मुहरबंद पुस्तक के वचनों के समान हो गया है, जिसे लोग एक विद्वान के हाथ में देकर कहते हैं, कृपया इसे पढ़िए, और वो कहता है, मैं विद्वान नहीं हूँ। इसलिए प्रभु कहता है, क्योंकि ये प्रजा अपने मुँह से मेरे पास आती है और अपने होंठों से मेरा आदर करती है, परंतु अपने हृदयों को मुझसे दूर कर लिया है और मेरे प्रति उनका भय मनुष्यों के उपदेश से सिखाया गया है। इसलिए देखो, मैं एक अद्भुत कार्य और एक आश्चर्य करूँगा, क्योंकि उनके बुद्धिमानों की बुद्धि नाश हो जाएगी और उनके विवेकी लोगों की समझ छिपा दी जाएगी। हाय उन पर जो अपनी परामर्श को प्रभु से छिपाने के लिए गहन प्रयास करते हैं और जिनके काम अंधेरे में होते हैं और जो कहते हैं, हमें कौन देखता है और हमें कौन जानता है। निश्चय ही तुम्हारा चीजों को उलट पुलट करना कुम्हार की मिट्टी के समान माना जाएगा, क्योंकि क्या बनाया हुआ काम अपने बनाने वाले के विषय में कहेगा, उसने मुझे नहीं बनाया, या क्या गढ़ी हुई वस्तु अपने गढ़ने वाले के विषय में कहेगी, उसे समझ नहीं थी। इसका प्रत्येक शब्द पूरा होगा। ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के सामने अपने हृदयों को दीन नहीं करते और जो सीधी चाल नहीं चलते। वे अपने वास्तविक उद्देश्यों को छिपाते हैं और उस गिरे हुए स्वर्गदूत के साथ संगति बनाए रखते हैं, जो झूठ से प्रेम करता है और उसे गढ़ता है। शत्रु उन लोगों पर अपना आत्मिक प्रभाव डालता है जिनका उपयोग वो उन लोगों को धोखा देने के लिए कर सकता है जो कुछ हद तक अंधकार में हैं। कुछ लोग उस व्याप्त अंधकार से ओतप्रोत होते जा रहे हैं और सत्य को परे रखकर भ्रम को ग्रहण कर रहे हैं। भविष्यवाणी द्वारा निर्दिष्ट दिन आ गया है। यीशु मसीह को समझा नहीं जाता। यीशु मसीह उनके लिए एक दंत कथा मात्र है। पृथ्वी के इतिहास के इस चरण में बहुत से लोग नशे में धुत मनुष्यों की तरह आचरण करते हैं। ठहरो और अचंभित हो, चिल्लाओ और पुकारो। वे मतवाले हैं पर दाखमधु से नहीं, वे लड़खड़ाते हैं पर प्रबल पेय से नहीं, क्योंकि प्रभु ने तुम पर गहरी निद्रा की आत्मा उंडेल दी है और तुम्हारी आंखें बंद कर दी हैं। भविष्यद्वक्ताओं और तुम्हारे शासकों अर्थात दृष्टाओं को उसने ढांप दिया है। आत्मिक नशा उन बहुतों पर छाया हुआ है जो ये मानते हैं कि वे वही लोग हैं जिन्हें ऊंचा उठाया जाएगा। उनका धार्मिक विश्वास ठीक वैसा ही है जैसा इस शास्त्र वचन में दर्शाया गया है। उसके प्रभाव में वे सीधा चल नहीं पाते। वे अपने कार्य व्यवहार में टेढ़ी मेढ़ी राहें बनाते हैं, एक और फिर दूसरा। वे इधर उधर डगमगाते हुए लड़खड़ाते हैं। प्रभु उन्हें बड़ी दया की दृष्टि से देखता है। उन्होंने सत्य का मार्ग जाना ही नहीं। वे सुनियोजित षड्यंत्रकारी हैं और जिनको स्पष्ट आत्मिक दृष्टि के कारण सहायता करनी थी और कर भी सकते थे, वे स्वयं ही धोखा खा गए हैं और एक दुष्ट काम को सहारा दे रहे हैं। इन अंतिम दिनों के घटनाक्रम जल्द ही निर्णायक हो जाएंगे, जब यह प्रकट हो जाएगा कि आत्मवाद के ये धोखे वास्तव में क्या हैं, दुष्ट आत्माओं के गुप्त कार्यकलाप। तो इनमें शामिल रहे लोग ऐसे हो जाएंगे मानो वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हों। इस कारण प्रभु कहता है, क्योंकि ये प्रजा अपने मुंह से मेरे निकट आती है और अपने होंठों से मेरा आदर करती है, परंतु उसने अपने हृदयों को मुझसे बहुत दूर कर लिया है, और मेरे प्रति जो उनका भय है वो मनुष्यों की आज्ञाओं से सिखाया गया है। इसलिए देखो, मैं इस प्रजा के बीच एक अद्भुत कार्य करूँगा। हाँ, एक अद्भुत कार्य और एक आश्चर्य, क्योंकि उनके बुद्धिमानों की बुद्धि नाश हो जाएगी और उनके समझदारों की समझ छिपा दी जाएगी। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को प्रभु से छिपाने के लिए गहरा प्रयत्न करते हैं और जिनके कार्य अंधकार में होते हैं, और वे कहते हैं, कौन हमें देखता है और कौन हमें जानता है। निश्चय ही तुम्हारा चीज़ों को उलट पलट करना कुम्हार की मिट्टी के समान ठहराया जाएगा, क्योंकि क्या कृति अपने बनाने वाले के विषय में कहेगी, उसने मुझे नहीं बनाया, या क्या गढ़ी हुई वस्तु अपने गढ़ने वाले के विषय में कहेगी, उसमें समझ न थी। मुझे ये दिखाया गया है कि अपने अनुभव में हम इन्हीं परिस्थितियों का सामना करते आए हैं और कर रहे हैं। जिन लोगों को महान प्रकाश और अद्भुत विशेषाधिकार मिले हैं, उन्होंने उन नेताओं की बात मान ली है जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जो प्रभु से अत्यंत अनुग्रहित और आशीषित रहे हैं। परंतु जिन्होंने स्वयं को परमेश्वर के हाथों से अलग कर शत्रु की पंक्तियों में खड़ा कर लिया है, संसार बाहरी रूप से सही लगने वाली भ्रामक भ्रांतियों से भर दिया जाएगा। एक मानव मन इन भ्रांतियों को स्वीकार करके अन्य मानव मनों पर प्रभाव डालेगा जो परमेश्वर की सच्चाई के अनमोल बलों को झूठ में बदलते आए हैं। जब उन्हें विश्वास योग्य रखवालों की तरह आत्माओं पर नज़र रखते हुए, जैसे कि उन्हें हिसाब देना है, खड़ा रहना चाहिए था, तब ये लोग पतित स्वर्गदूतों से धोखा खाएंगे। उन्होंने अपने युद्ध के हथियार डाल दिए हैं और बहकाने वाली आत्माओं की बातों पर ध्यान दिया है। वे परमेश्वर के परामर्श को निष्फल कर देते हैं और उसकी चेतावनियों व फटकारों को एक ओर रख देते हैं, और स्पष्ट इनकी पक्ष में खड़े हैं बहकाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान देते हुए। अब आध्यात्मिक मधो उन मनुष्यों पर हावी है जिन्हें कड़ी शराब के प्रभाव में आए व्यक्तियों की तरह लड़खड़ाना नहीं चाहिए। अपराध और अनियमितताएं, धोखाधड़ी, छल और अन्यायपूर्ण व्यवहार स्वर्गीय दरबारों में विद्रोह करने वाले उस नेता के उपदेश के अनुसार दुनिया भर में व्याप्त है। इतिहास फिर से दोहराया जाने वाला है। मैं बता सकता हूँ कि निकट भविष्य में क्या होगा, पर समय अभी नहीं आया है। शैतान की कपटपूर्ण युक्ति के माध्यम से मृतकों के रूप प्रकट होंगे और बहुत से लोग उससे जा मिलेंगे जो झूठ से प्रेम करता है और झूठ गढ़ता है। मैं अपने लोगों को चेतावनी देता हूँ कि हमारे बीच ही कुछ लोग विश्वास से भटक जाएंगे और प्रलोभक आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान देंगे और उनके कारण सत्य की निंदा की जाएगी। बैटल क्रीक लेटर्स 10:32-183।
दानियल का पहला अध्याय, जो प्रकाशित वाक्य 14 के पहले स्वर्गदूत के संदेश का प्रतिनिधित्व करता है, पृथ्वी के पशु के प्रारंभिक इतिहास से मेल खाता है। दानियल के अध्याय 1, 2 और 3, जो प्रकाशित वाक्य 14 के तीनों स्वर्गदूतों के संदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंत से मेल खाते हैं। नबुकदनेस्सर पहले स्वर्गदूत के इतिहास का और दानियल के पहले अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है। बेलशस्सर तीसरे स्वर्गदूत के इतिहास का और दानियल के पहले 3 अध्यायों का प्रतिनिधित्व करता है।
बाबुल के अंतिम शासक के लिए, उसी प्रकार जैसे प्रतिरूप में उसके प्रथम शासक के लिए दिव्य प्रहरी का ये दंडादेश आ चुका था। हे राजा, तुझसे ये कहा जाता है, राज्य तुझसे जाता रहा। दानियल 4:35। भविष्यद्वक्ता और राजा 535।
हम अगले लेख में नबुकदनेस्सर और बेलशस्सर का अध्ययन जारी रखेंगे।
परमेश्वर की सामर्थ्य के इस प्रदर्शन से आश्चर्य व भय से अभिभूत बेलशस्सर, जो ये दर्शाता था कि उनके पास एक साक्षी था, यद्यपि उन्हें इसका ज्ञान न था, को जीवित परमेश्वर के कार्यों और उसकी शक्ति को जानने तथा उसकी इच्छा पूरी करने के बड़े अवसर मिले थे। उसे बहुत प्रकाश का सौभाग्य मिला था। उसके दादा नबूकदनेस्सर को परमेश्वर को भूलने और अपनी ही महिमा करने के खतरे के विषय में चेतावनी दी गई थी। बेलशस्सर को नबूकदनेस्सर के मनुष्यों की संगति से निकाले जाने और मैदान के पशुओं के साथ उसके रहने के विषय में जानकारी थी, और इन तथ्यों को, जो उसके लिए पाठ होना चाहिए था, उसने ऐसे तुच्छ जाना मानो वे कभी घटित ही न हुए हों। और वो अपने दादा के पापों को दोहराता रहा। उसने वे अपराध करने का साहस किया जो नबूकदनेस्सर पर परमेश्वर के न्याय लेकर आए थे। वो केवल इसलिए दोषी नहीं ठहराया गया कि वो स्वयं दुष्टता कर रहा था, बल्कि इसलिए भी कि उसने उन अवसरों और क्षमताओं का लाभ नहीं उठाया जो, यदि विकसित की जाती, तो उसे सही मार्ग पर चलने के योग्य बनाती। टेस्टिमोनीज टू मिनिस्टर्स 4:36।